और ये हो सकते हैं इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, उदार होने में कोई कठिनाई नहीं, स्वाधीन होने में कोई कठिनाई नहीं, प्रेमी होने में कोई कठिनाई नहीं। उदार होने का अर्थ क्या है? किसी न किसी नाते सभी को अपना मान लें। अपना मान लेंगे तो क्या होगा? सुखियों को देख करके प्रसन्न हो जाए, दुखियों को देख कर हृदय कलंक हो जाए, इस्लाम होगा, कोई धंधे खर्च होगा, बहुत लाभ होगा समाज को भी अपने को भी। जब सुखियों को लेकर प्रसन्न होंगे तो सुखी बन आपकी आवश्यकता अनुभव करेगा और आप में प्रसन्नता आ जाने से निष्कामता पुष्ट हो जाएगी। दुखियों को देखकर कर्ण होंगे तो सुख भोग की ऋतु मिल जाएगी, भोग की किसी का नाश हो जाएगा और आपको योग की प्राप्ति हो जाएगी। उदारता से लोक का भी हित हुआ और परलोक भी बन गया, यानी अध्यात्म जीवन में भी प्रवेश हो गया और लौकिक लोक का हित हो गया, आपका खर्च नहीं हुआ, घटना जिंदा भी बड़ी। लेकिन भाई शरीर को अपना मानना पड़ेगा, केवल दूध आपके लिए, करुण होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए, उदार होने के लिए। उदार करता है करुण होना, प्रसन्न होना, दुखियों को देखकर करुण होना, सुखियों को देखकर प्रसन्न होना, ये उदारता है। अब करुण होने से भी वो कृषि नाश हो जाती है, प्रसन्न होने से काम का नाश हो जाता है, काम का नाश होने से भी राम की प्राप्ति हो जाती है और वो कृषि नाश होने से योग की प्राप्ति हो जाती है, उदार होने से आपको योग की प्राप्ति होगी। ऐसे ही स्वाधीन भी होना है, स्वाधीन होने से बहुत लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है और स्वाधीन होने में आप पराधीन नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वाधीन हो गए। मेरा कहने से मेरा हो तो जाता नहीं, चाहने से चाह पूरी हो नहीं जाती और अच्छा होने से कोई चाह पूरी नहीं होगी ऐसा भी नहीं होता, अच्छा होने से भी कुछ चाह तो पूरी हो जाती है, कुछ बिना पूरी हो जाती है, कुछ पूरी बिना हो जाती है। अच्छा होने का यही है कुछ कामना आवश्यक कामना पूरी होकर नाश हो जाए, अनावश्यक कामना उत्पन्न नहीं हो। तो जब अनावश्यक कामना उत्पन्न नहीं होगी तो कामना निवृत्ति से आपको शांति मिल जाएगी और आवश्यक कामना पूरी होगी तो उसका सुख मिल जाएगा, सुख और शांति दोनों मिल गया। कैसे? अच्छा होने से। और निर्गम होने से निर्विकार का भी मेरा कुछ नहीं है, इससे मोह का नाश हो गया, लोभ का नाश हो गया, अभिमान का नाश हो गया, दीनता का नाश हो गया, प्रसन्नता का नाश हो गया। ये सब अध्यात्म जीवन है, मेरा कुछ नहीं है इससे बहुत लाभ होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इससे बहुत लाभ होता है, और मैं प्रभु का हूं इससे बड़ा लाभ होता है, भविष्य अभय हो जाता है, भय जहां नाश हो जाता है, और सब कुछ प्रभु का है इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। ये जीवन का सत्य है, सत्संग तो मैं थे ना आप तो सत्संग करेगा, ये जीवन के सत्य को स्वीकार करें, मेरा कुछ नहीं इसको स्वीकार करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो स्वीकार करें, तू अपने हैं इसको स्वीकार करें, सब कुछ प्रभु का है इसको स्वीकार करें, मान ले ऐसा है और उसको पसंद कर लें, उसमें दृढ़ हो जाए तो सत्संग हो गया। तो सत्संग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप नहीं कर सकते या जो अभी नहीं हो सकता, सत्संग हो सकता है और सत्संग ही होता है साधन का निर्माण, साधन के निर्माण का अर्थ होता है कि साधना और जीवन एक हो जाती है। जैसे अगर आपने मान लिया कि मेरा कुछ नहीं है तो निर्विकार शरीर की साधना प्राप्त हो जाएगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो शांति की साधना प्राप्त हो जाएगी, और आप अपने में संतुष्ट हो जाएंगे, अपने में संतुष्ट होने से जीवन मुक्ति मिल जाएगी और परमात्मा मिल जाएगा। ये दोनों बातें हो जाती है। अगर मनुष्य केवल अचार होना पसंद करे तो जीवन मुक्ति भी मिल जाए और परमात्मा भी मिल जाए अचार होने से। क्यों? अचार होने से संसार के संबंध की निवृत्ति हो जाएगी, संसार की निवृत्ति नहीं होती, संसार का संबंध छूट जाएगा और परमात्मा की समीपता प्राप्त हो जाएगी। जब हम कुछ चाहते हैं तब परमात्मा दूर होते हैं, अगर हम कुछ नहीं चाहें तो परमात्मा की समीपता प्राप्त हो जाएगी। तो संसार की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति ये कैसे प्राप्त हुई? अचार होने से। अचार होने को क्या खर्च पड़ा, क्या प्रश्न पड़ा आपका? अगर ऐसा कानून होता है कि आप जो चाहेंगे सो हो ही जाएगा तो संभव नहीं है। तो बहुत जरूरी बात है, उन्होंने देखी की सत्संग में आई थी, थोड़े दिन हुए, साल दूसरा मिला होगा। तो बिहार में बक्सर नाम की जगह है, वहां सत्संग हो रहा था। ये जब कोई व्याख्यान देते हैं तो अपनी दशा का वर्णन करती है ज्यादातर, बहुत अच्छे तरीका है। तो कह रही थी कि मैं जो चाहती हूं उसे होता ही नहीं, और जो होता है तो मुझको अच्छा लगता ही नहीं, और जो अच्छा लगता है तो रहता ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। जीवन का सत्य है ऐसा, इस बात का अनुभव आप सभी को हो सकता है। एक एमए पास लड़का बैठा हुआ था मेरे पास, तो रोने लगा। मेरे दीदी ने जीवन का चित्र खींच दिया, उसके बाद मुझे बोलना था। मैंने कहा जब आप जानते हैं कि जो चाहती हूं उसे नहीं होता है तो चाह ही बोल दो, ये हो सकता है ना। लेकिन जब हम जानते हैं कि हम तो चाहते हैं तो होता ही नहीं है, तो अचार होने में तो कोई नुकसान कठिन नहीं है। तो अचार होने से कुछ कामनाएं जो जरूरी कामनाएं हैं हमारे हिसाब से नहीं, कुदरत के विधान के साथ जो जरूरी कामनाएं हैं वो जरूर पूरी हो जाएंगी, और जो अनावश्यक कामनाएं वो नाश हो जाएंगी। तो जरूरी कामनाएं पूरी होकर नाश हो गई और अनावश्यक कामनाएं बिना उत्पन्न ही नहीं हुई, नाश हो गई, बिना पूरी हुई नाश हुई। तो कामना निवृत्ति में शांति है और कामना पूर्ति में सुख है। तो सुख भी आपको मिल गया और शांति भी आपको मिल गई। और प्रयास अभाव में किस सत्य को स्वीकार किया, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहने पर भी कुछ संकल्प पूरे होते ही हैं और चाहने पर सभी संकल्प पूरे होते नहीं। तो अब देखिए कितनी भूल की बात है, कितना जीवन का सत्य कोई हमारे चाहने से सब संकल्प पूरे हो जाए तो होंगे नहीं, और न चाहने से कोई संकल्प पूरा ना हो तो वरना होगा नहीं। इसलिए चाह का जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। जीवन का इतना बड़ा सत्य है कि अगर हम खुद न चाहें तो उससे हमारी कोई हानि होती नहीं। जैसे बुराई रहित होने से अपनी कोई हानि नहीं होती, जैसे दूसरों के साथ भलाई करने से अपनी कोई हानि नहीं होती, नियम है जीवन का। भलाई करने से अपनी कोई हानि नहीं होती, क्यों? विधान क्या है? दूसरों के साथ जो कुछ करेंगे कालांतर में कई गुना अधिक होकर अपने साथ हो जाएगा। तो अपना भला भलाई करने में हुआ, अपना भला भलाई रहित होने में हुआ। अब ये जीवन का विधान है, ये जीवन का सत्य है। अगर इस सत्य को मान ले आज हम कि भाई बुराई रहित होने से लाभ होता है, भलाई करने से लाभ होता है, तो सामान जितने संघर्ष में सब मिल जाए, मिल जाएगा जो मिल जाए ठीक जरूर मिल गया। परंतु सत्य पर ध्यान ही नहीं जाता। तो मानव सागर ने कहा कि भाई देखो जीवन का जो सत्य है उसे अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो न तो आपका व्यक्तिगत शांति मिलेगी, न सामूहिक शांति मिलेगी, न अपना कल्याण होगा, न सुंदर समाज का निर्माण होगा, न भगवत प्राप्ति होगी, न सिर्फ शांति मिलेगी, न जीवन मुक्ति मिलेगी। और अगर सत्य को स्वीकार कर ले तो अपना भी कल्याण होगा, फिर शांति मिलेगी, जीवन मुक्ति मिलेगी, भगवत भक्ति मिलेगी। क्योंकि सत्य को स्वीकार करने से साधन का उदय होता है, साधन और जीवन एक हो जाता है। अब देखे आपने ये सब स्वीकार किया, सच्चा भाई जब मेरे जब ये विधान ही है कि मेरे चाहने से कभी सामना पूरी नहीं होती, तो आज मैं अचा होने का व्रत देता हूं। जब ये विधान ही है कि मिली हुई वस्तु से अलग होना ही पड़ेगा, मिली हुई वस्तु अलग होती ही है, अलग है ही, जो मुझसे अलग है उसको अगर मैं अपना न मानूं तो इसमें कोई हानि तो होती नहीं। जब दूसरों के साथ की हुई बुराई से अपनी हानि होती है तो बुराई ना करूं तो इसमें कोई हानि होती नहीं। जब दूसरों के साथ भलाई करने से अपनी भलाई होती है तो इसमें कोई हानि तो है नहीं। सामर्थ्य के अनुसार आप भलाई भी कर सकते हैं और सर्वांश में आप बुराई छोड़ सकते हैं। तो बुराई छोड़ने से भी आपका लाभ और भलाई करने से भी आपका लाभ अपने आप ही होगा, चाहो कुछ मत। लेकिन जब तक अचार नहीं होंगे तब तक बुराई नहीं होने की सामर्थ्य नहीं आती, भलाई करने की सामर्थ्य नहीं आती, अचार होने की सब बात आ जाती है। क्योंकि अचार होने पर मोह नहीं रहता और लोभ नहीं रहता और भय नहीं रहता। निर्मोहता, निर्दोषता, निर्भयता, समता, मुझता ये जीवन का सत्य है, ये साधना है। निर्लोभता, निर्मोहता, समता, मुझता यानी प्रसन्नता प्राप्त होती है, समता प्राप्त होती है। समता माने योग्य होते हैं और निर्मोहता से निर्भयता प्राप्त हो जाती है और निर्लोभता से दृढ़ता प्राप्त हो जाती है। ये जीवन का विज्ञान है। तो मैं ये कह रहा था कि आज असल में कठिनाई हमको हो गई है कि जो जीवन का सत्य है उसे हम स्वीकार नहीं करते, और सत्य को जो स्वीकार नहीं करते तो साधन का उदय भी फिर कहते हैं कि अपना साधन बड़ा कठिन है। इस साधन तो इतनी कठिन है ना कि आप अचार होते नहीं और कहते शांति बड़ी कठिन है, शांति कठिन का मिलेगी नहीं। निर्मम होते नहीं कहते निर्विकार का बड़ी कठिन है, सहगत होते नहीं कहते हैं भाई पूर्ण प्रेम बड़ा कठिन है। तो कठिन नहीं है, सत्य को स्वीकार करें साधन कठिन नहीं है, साधन सहज है। और सत्य को स्वीकार न करें तो साधन असंभव है, संभव ही नहीं है। इसलिए सत्संग कोई परम पुरुषार्थ माना, सत्संग ही परम पुरुषार्थ है और कोई परम पुरुषार्थ नहीं है। इन सत्संग का मतलब कि व्याख्यान सुनना नहीं, ये तो सब चर्चा है, सोचना समझना ये सब चिंतन है। सत्य को स्वीकार कर लेना, मेरा कुछ नहीं है ये सत्य है, मुझे कुछ नहीं चाहिए सत्य जो दो तरह से नहीं चाहिए। एक तो तू चाहते तो होते ही नहीं तो चाहने में क्या फायदा, और दूसरी बात यह है कि सचमुच मुझे जो चाहिए वो तो मुझ में मौजूद है। अगर भगवान चाहिए भगवान अपने मौजूद है, सत्य चाहिए सत्य अपने मौजूद है, अमृत चाहिए तो अमृत अपने मौजूद है, सर्वदुखों की निवृत्ति चाहिए तो सर्वदुखों की निवृत्ति अपने मौजूद है। तो अपने को जो चाहिए वो अपने में है, तो जो अपने में है उसको उसकी भी चाह क्यों करें और जो संसार में नहीं है उसकी भी चाह क्यों करें। विचार करो संसार में अपना कुछ नहीं है तो उससे क्या चाहे, परमात्मा अपने में है तो उससे क्या चाहे, तो न संसार से कुछ चाहे न परमात्मा से कुछ चाहे, अचार हो जाए। जीवन का सत्य है तो अचार होने से अपने में अपने परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और संसार के संबंध की निवृत्ति हो जाती है। और संसार के संबंध की निवृत्ति होने से आपको बहुत लाभ होता है। देखिए संसार सुखद नहीं है, संसार का संबंध सुखद है। आप विचार करके देखो, किसी समय अगर पता लगाया जाए मुंबई में सारे शहर पता लगाया जाए तो कितनी चिताएं जल रही होंगी, रोहरा पड़ा होगा कि कितने घरों में, और कहीं खुशी हो रही होगी, कहीं हानि हो रही होगी, कहीं लाभ हो गया होगा। लेकिन क्योंकि हमारा आपका संबंध नहीं है तो न हमको हर्ष हो रहा है न विषाद हो रहा है, आप संतान में शांत बैठे हुए हैं। तो अपना न मानने का कितना बड़ा भारी प्रभाव होता है, और अपना मानना तब संभव होता है, अपना अधिकार होता है, अधिकार अपना है नहीं। हम जब तक चाहें तब तक शरीर को रख ही नहीं सकते, तो अपना मानने से क्या फायदा, हम जो चाहें तो हो ही नहीं सकता, तो चाहने से क्या फायदा। तो निर्मम होना और अचार होना ये बहुत ही स्वाभाविक सत्य है जीवन का, निर्मम होना ही पड़ेगा। मेरा कुछ नहीं है संसार में इस बात को मान लेना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार से विवाद मान लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो संसार दे नहीं सकता, और मुझे कुछ नहीं चाहिए परमात्मा से विवाद मान लेनी पड़ेगी। क्यों, तो अगर मैं चाहूंगा तो परमात्मा से दूर हो जाऊंगा, अलग हो जाऊंगा, तो परमात्मा से अलग हो जाना से तो लाभ होगा नहीं, कोई परमात्मा की प्राप्ति से लाभ होगा। तो अचार होने से परमात्मा की, परमात्मा से कुछ न चाहो तो परमात्मा प्राप्त हो जाए, और संसार से कुछ न चाहो तो संसार का संबंध टूट जाए। संसार नहीं टूट जाएगा, संबंध टूट जाएगा। अच्छा बुराई छोड़ दो तो कर्तव्य पूर्ण आ जाए, बुराई नहीं करूंगा अगर ऐसा मान लो तो कर्तव्य पूर्ण आ जाए, तो कर्तव्य पूर्णता से जगत का अधिकार ऐसा हो जाए, और अचार होने से अपने को स्वाधीनता मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, तो कितना बड़ा लाभ हुआ बताइए। और हमने क्या किया, इस सत्य को स्वीकार किया कि बुराई नहीं करूंगा, इस सत्य को स्वीकार किया मुझे कुछ नहीं चाहिए, सत्य को स्वीकार किया मेरा कुछ नहीं है, सत्य को स्वीकार किया। तो इसी को सत्संग कहते हैं। और आप व्याख्यान रूप सुने ये सुंदर हो जाएंगे, बुराई नहीं रहते, लेकिन लोग पूछे पढ़ते आसम मत्सर भूलते सु पढ़ा सुने अपने समान सबको समझो, समझा अपने भाई को बेटी को भी अपने समान नहीं, लुभाई को भी अपने समान नहीं समझा। क्या है ये सत्संग नहीं है ना, इन बातों में आपने आसम मत्सर भूलते सु, लेकिन इस बात को स्वीकार कर देंगे। तो जो सुनते हो उसको संतवाणी से, भक्तवाणी से, वेदवाणी से उसको, और जो अपने ज्ञान से जानते हो उसको, इन दोनों तरह से जाने हुए सत्य को भी स्वीकार करो, सुने हुए सत्य को भी स्वीकार करो। तो जाने हुए सत्य को स्वीकार करने से ही सत्संग हो जाएगा, और सुने हुए सत्य को स्वीकार करने से सत्संग हो जाएगा। अभी तो देख पाने में सुना है कि अपने समान दूसरों को समझो, कि जाना हुआ है कि मेरे साथ कोई बुराई न करे, तो बुराई नहीं होना ये जाना हुआ सत्य है, और दूसरों को अपने समान समझना ये सुना हुआ सत्य है। तो सही मान लो, सही मान लो परमात्मा है ये सुना हुआ सत्य है, संसार में मेरा कुछ नहीं है ये जाना हुआ सत्य है। इस तरह के जो जीवन का सत्य है उसे स्वीकार कर लो। अगर जीवन के सत्य को स्वीकार कर लोगे तो असाधन का नाश हो जाएगा, साधन की अभिव्यक्ति हो जाएगी। और जब असाधन का नाश हो जाता है, जब साधन की अभिव्यक्ति हो जाती है तो साधन और जीवन में एकता हो जाएगी। इन साधन और जीवन अलग अलग जो दिखाई देता है, जब मैं अलग हूँ मेरी साधना अलग है, ये न रहकर मैं और साधना एक हो जाएंगे, जीवन और साधना एक हो जाएगी। तो साधना जब जीवन हो गई, जीवन जब साधना हो गई तो आपको कोई कठिनाई नहीं मालूम पड़ेगी, क्योंकि वो जब अभिन्न अभिन्नता हो गई साधना से, तो साधना जीवन हो गई, जीवन साधना हो गई, सहज हो गई, स्वाभाविक हो गई, अपने स्वरूप ही हो गया। तो साधना और जीवन की एकता होनी चाहिए, साधना और जीवन में भिन्नता नहीं रहना चाहिए। साधना क्या है, जैसे निर्विकारता, स्थिर शांति, स्वाधीनता, अखंड स्मृति, अगाध प्रियता, ये साधना है। जब मुझ में प्रियता उदय हो गई तो प्रियता और मेरे रूप हो गया, स्मृति उदय हो गई स्मृति और मेरे रूप हो गया, और निर्विकारता आ गई, स्थिर शांति आ गई, स्वाधीनता आ गई। तो स्वाधीनता, निर्विकारता, स्थिर शांति, स्मृति, प्रियता, ये सब साधन है। ये सब साधना अपना जीवन हो जाए, अपना स्वरूप हो जाए, और ये साधना जो है ये साथ से मिल जाएगी। हम निर्विकार होकर परमात्मा से मिल जाते हैं, हम शांत होकर परमात्मा से मिल जाते हैं, हम स्वाधीन होकर परमात्मा से मिल जाते हैं, हम उदार होकर परमात्मा से मिल जाते हैं, हम प्रेमी होकर परमात्मा से मिल जाते हैं। तो साधन करना नहीं है, करना है सत्संग, होना है साधन, मिलना है साथ। सत्संग करोगे साधन होगा, साथ मिलेगा, ये भाषा अनुसंग आती है। तो फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि सत्संग करो, साधन स्वतः होगा। अब आपने कहा परमात्मा का नाम तो लिया, लेकिन संसार में की ममता को नहीं तोड़ा, तो नतीजा क्या होगा, हे भगवान मेरी ये कामना पूरी हो जाए, हे भगवान मेरी ये कामना पूरी हो जाए, यही रहेगा। तो परमात्मा का चिंतन भी किया, मुझे संबंध संसार से ही रहा, तो ये साधन नहीं, ये साधन है। उसका नतीजा ये होगा कि परमात्मा को मिलेगी, चाहे कितना चिंतन कीजिए, कितना ध्यान कीजिए, कितने प्रार्थना कीजिए, लेकिन अगर आपने अनुभव कर लिया पहले तो मेरा कुछ नहीं है, तो संसार का संबंध टूट गया, और फिर परमात्मा को याद किया तो परमात्मा को मिल जाएगा। क्योंकि दोनों चीजें नहीं, ऐसा नहीं होता कभी कि संसार का संबंध भी बना रहे और परमात्मा का संबंध भी बना रहे, संबंध एक से ही रहेगा, दो का नहीं रहेगा। यानी बुराई भी करते रहे और भले भी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक सर्वांश में बुराई का त्याग नहीं करेंगे भले होंगे ही नहीं, तो भले होने के लिए बुराई छोड़ना
से परमात्मा का रूप हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हमने संसार संबंध जोड़ लिया। तो संसार का संबंध छोड़ो, संसार की सेवा हम छोड़ो, संसार की निंदा हम करो, संसार को बुरा न समझो, खूब संसार की सेवा करो और अपना बिना अपना परमात्मा को मानो और संसार को परमात्मा का मानो। ये संसार का संसार परमात्मा का है, परमात्मा अपना है, इसलिए भाई संसार की सेवा करना ये परमात्मा की पूजा है। संसार की सेवा ये परमात्मा की पूजा है और पूजा के अंत में परमात्मा के प्रेम का उदय होगा। चाहे तो ऐसा मान लो, ऐसा भी है कि चाहे तो तुम्हें परमात्मा की याद आएगी, नहीं तो जब तुम पूरा काम करोगे तो परमात्मा को तुम्हारी याद आएगी। चाहे तुम्हें परमात्मा प्यारा लगेगा, चाहे तुम परमात्मा को प्यारी लगोगे, तो जब परमात्मा की ओर से तुम्हारे पर प्रेम आएगा तो तुम्हारा जीवन प्रेम बन जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। अभी धीरे धीरे वाली बात तो है नहीं, क्योंकि परमात्मा सदैव होने से अभी मौजूद है, आप ये भी मौजूद हैं, तो आपको अभी परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा और अभी परमात्मा संसार का संबंध तोड़ना पड़ेगा। तो संसार आप देख रहे हैं परंतु उस पर आपका अधिकार नहीं है, वो आपके काबू में नहीं है, आपके अधीन नहीं है। आपके चाहते हुए भी बचपन चला गया, जब आप भी चली गई, बुरा आ गया, बहुत से संयोग वियोग बदल गए, बहुत से उत्पत्ति विनाश बदल गए, ऐसे देख रहे हैं आप। तो जिस पर अपना कोई अधिकार नहीं है उसका संबंध तोड़ना चाहिए, उसकी सेवा नहीं छोड़ना चाहिए। सेवा करो, संबंध तोड़ो, यही तो कला है जीने की। और परमात्मा से संबंध जोड़ना चाहिए परमात्मा, और तो काम परमात्मा के पाने के लिए, और आपके पास कोई भविष्य तो परमात्मा मिलेगी नहीं। सब बल से तो अपने से कम बल की चीज पर बल से प्राप्ति होती है, योग्यता से कम योग्यता की चीज पा सकते हो, अमूल्य से समान मूल्य की चीज पा सकते हो। परमात्मा तो अमूल्य है, अनंत है, अपार है, उसकी महिमा का बारा पार नहीं है। तो इसलिए परमात्मा को से संबंध जोड़कर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, और संसार का संबंध परमात्मा का संबंध दोनों का नहीं रह सकता, एक ही रह सकेगा। संसार का संबंध रखोगे तो परमात्मा से दूर हो जाओगे, परमात्मा का संबंध रखोगे तो परमात्मा को पा जाओगे। तो हमारा संबंध परमात्मा के साथ हो, चाहे ऐसा मान लो, और चाहे ऐसा मान लो, और तरीका निकाल लो कि भाई संसार सेवा करने के लिए संसार से संबंध जोड़ लो और प्यार करने के लिए परमात्मा से संबंध जोड़ लो। इन्हें कुछ संसार से मांगो तो भाई परमात्मा से मांगो, उससे फर्क पड़ेगा, दोनों में भाई अंतर आ जाएगा। संसार से कुछ नहीं मांगोगे तो संसार की निवृत्ति हो जाएगी, संसार का संबंध टूट जाने से संसार के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे। संसार का प्रभाव क्या है? पराधीनता, जड़ता, अभाव, निरस्ता, सुख दुख, ये संसार का प्रभाव है। ये संसार के संबंध से होता है, सुख भी संसार के संबंध से होता है, दुख भी संसार के संबंध से होता है, अभाव भी संसार के संबंध से होता है, जड़ता और पराधीनता भी संसार के संबंध से होती है, शक्तिहीनता भी संसार के संबंध से होती है। तो जब संसार का संबंध नहीं रहेगा तो जीवन में अभाव नहीं रहेगा, पराधीनता नहीं रहेगी, सुख की दास्ता नहीं रहेगी, दुख का भय नहीं रहेगा, निरस्ता नहीं रहेगी। ये संसार के प्रभाव से मुक्त होने का नाम मुक्त होना है, और मुक्ति कोई चीज नहीं है। ये संसार के प्रभाव से जैसे तन को अपना मान लिया, अब मोह में बन गए, तो मोह का बंधन निवृत्त हो जाएगा, निर्मोहता प्राप्त हो जाएगी। धन को अपना मान लिया, लोभ में बन गए, अब लोभ का बंधन नाश हो जाएगा और निर्लोभता प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से संसार के संबंध से जो विकार पैदा होते हैं, जो दोष पैदा होते हैं, वे सब दोष मिट जाएंगे और आप निर्दोष हो जाएंगे। इसीलिए संसार के संबंध तोड़ने की बात है। ऐसे ही परमात्मा के संबंध से, परमात्मा परम उदार है, परमात्मा परम स्वतंत्र है, परमात्मा परम प्रेम से भरपूर है, तो आप में उदारता, स्वाधीनता और प्रेम का उदय हो जाएगा। ऐसे ही हम जो है एक गोला है, जो गोला के समान है, इसको संसार संबंध जोड़ लीजिए तो राग में, द्वेष में, क्रोध में, भोग में, पराधीनता में, जड़ता में बन जाएगा, और इसको योग में भोग से हटा दीजिए, इसको संसार संबंध जोड़ दीजिए, परमात्मा संबंध जोड़ दीजिए, इसको योग में, बोध में, प्रेम में प्रेम प्राप्त हो जाएगा। संसार संबंध से भोग मोह आसक्ति प्राप्त होगी, परमात्मा संबंध से योग बोध प्रेम प्राप्त होगा। तो अब आप संसार का संबंध तोड़ने में, जबकि इस पर आपका स्वतंत्र अधिकार है, परमात्मा संबंध होने में घटना ही। तो अब आपको भोग आसक्ति से छूटना है, युद्ध बोध प्रेम प्राप्त करना है, तो परमात्मा को से संबंध स्वीकार करो। मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु का हूँ, जगत में मेरा कुछ नहीं है, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। तो ये मानने में आपको क्या करना है, कौन सा कष्ट है, कौन सा धन खर्च होता है, कौन सा संकट होता है। हाँ, जगत में मेरा कुछ नहीं है, ठीक बात है। तो इसका मतलब ये हुआ जगत का अर्थ क्या है, शरीर और जगत में भी एक चीज है ना। तो शरीर में भी मेरा कुछ नहीं है, तो शरीर से जगत को सेवा करो, शरीर से जगत को हानि मत पहुंचाओ। अब जगत की सेवा करोगे तो आप मुक्त हो जाओगे, और शरीर से विषयों का भोग करोगे तो आप बद्ध हो जाओगे। तो अब आप सोचो कि शरीर से भोग करना चाहिए, शरीर से सेवा करना चाहिए। शरीर के दोनों उपयोग हो सकते हैं, गलत उपयोग हो सकता है भोग, सही उपयोग हो सकता है सेवा। आप विचार करके देखो, भोग के साथ ही संयम है, सेवा का साथ ही संयम है, भोग का साथ ही जिसको कहना चाहिए सुख लुभता है, और सेवा का साथ ही सब है। तो तप संयम सेवा, सेवा सेवा करो, तप भी आ जाएगा, संयम भी आ जाएगा, और अंत में त्याग आ जाएगा। तो सेवा पूर्ण बजा के त्याग में होती है, अंत त्याग में होता है। और भोग करोगे तो असंयम आ जाएगा, दुराचार आ जाएगा, दुर्विचार आ जाएगा, और अंत में मोह और आसक्ति आगत हो जाओगे। तो जीवन का जो सत्य है उसको देख लो कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे कहने से मान लो जीवन का सत्य इसी प्रकार का है, तो आप सत्य को स्वीकार करें।